الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو جیسے کہ آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سورہ مائدہ کی آج آیات نمبر 8 سے لے کے 10 تک جو ابھی تلاوت کی گئی تو ان کو پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے ان کا ترجمہ غالباً نہیں شروع کیا تھا ابھی پڑھنا، تو پہلے ان کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. معارف القرآن کی جو اصل کتاب ہے اس میں تو ترجمہ جو حضرت نے یہاں پہ نقل کیا، یعنی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن کے اندر جو ترجمہ لیا ہے وہ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے. محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، تو ان کا جو زمانہ تھا وہ 19th century کے اواخر اور 20th century کے بالکل ابتدا کا زمانہ تھا، تو ان کی اردو جو ہے وہ پھر بھی تھوڑی بہت ہمارے لیے مشکل کبھی ہو جاتی ہے، ورنہ تو انہوں نے شفیع رحمۃ اللہ نے اس کو آسان کر کے رکھا ہی ہے یہاں پر. لیکن جو سلائڈز ہیں آپ کے سامنے، تو ان میں جو ترجمہ یہاں پہ نقل کیا ہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا آسان ترجمہ قرآن وہاں سے نقل کیا ہے. تو بہرحال آپ کے سامنے اصل کتاب ہو یا آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو تو ہم ساتھ ساتھ لے کر کے ان کو چلیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایھا، اے الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کیا جنہوں نے. کس پر اعتماد کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کیا کہ آپ اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے. اور جب اللہ کا رسول ہم نے آپ کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو باتیں بھی ہمیں بتائیں گے کہ یہ اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کرا ہے، اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی باتیں ہی ہوں گی کیونکہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے. تو الذین آمنو سے وہ لوگ مراد ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی انہی میں شامل ہوں، کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے پر ایسے اعتماد کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ مائدہ کے اندر ایک بار پھر یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والوں، کہہ کر بات شروع کرتے ہیں. کونو قوامین للہ، ہو جاؤ تم سب کے سب، ٹھیک ہے. کن تم ایک چیز ہو جاؤ، لیکن کونو تم سب کے سب ہو جاؤ قوامین، ٹھیک ہے. قوامین کا مطلب قوام، کھڑے ہونے والے، ٹھیک ہے، یعنی اسٹیبلش ہونے والے، پابندی کرنے والے. سبحان اللہ، پابندی کرنے والے، جیسے کہ حضرت تھابی رحمۃ اللہ نے آگے لکھا، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. جب بھی اللہ کا نام بغیر الف کے لکھا جائے گا تو اس کو للہ پڑھیں گے، اور جب الف کے ساتھ لکھیں گے شروع میں جو الف ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ پڑھیں گے، تب اس کو للہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ، لیکن بغیر الف کے للہ، یعنی اللہ کے لیے. تو تم سب کے سب ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے، شہداء بالقسط، ٹھیک ہے، شہداء کے گواہ، شہادت دینے والے، شہداء، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ میدان جنگ والی شہادت مراد نہیں ہے بلکہ गवाही देने वाले, बिल किस्त, इंसाफ के साथ। किस्त का जो लफ्ज है ये इंसाफ के लिए इस्तेमाल होता है, और बा जो है ये इसके साथ लगा हुआ हर्फ जर है, जिसका मतलब होता है आमतौर पर मतलब होता है साथ। ठीक है, तो इंसाफ के साथ गवाही देने वाले हो जाओ ए ईमान वालों, तुम सब के साथ। वला यजरिमन्नकुम, और नहीं, यजरिमन्ना हरगिज ना उभारे तुमको, हरगिज ना उभारे तुमको, या तुम्हारे किसी काम के होने का सबब ना बन जाए, हरगिज नहीं। यजरिमन्ना, ठीक है, नूने सकीला के साथ ताकीद आ जाती है वर्ब के अंदर, हरगिज नहीं। उभरो तुम, उभरो तुम, कुम कुम का मतलब तुम सब के सब, ठीक है, तो नहीं तुमको उभारे। शनआन कौमिन, शनआन दुश्मनी, शनआन दुश्मनी कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी, ठीक है, अला इस बात पर, ठीक है। अच्छा, ये जो तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा यहाँ पर है ना, तो बज़ाहिर इसमें लगता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं इसके अंदर ना, ठीक है, तो कौमिन का तर्जुमा, खैर किसी कौम, यहाँ तक तो बात ठीक है, कहीं आगे मैंने मिस्टेक भी देखी है कोई। खैर, अला पर, अल्ला तादिलू, अल्ला तादिलू असल में ये लफ्ज है अन, और उसके बाद है ला, तो अन और ला को जोड़ करके जब पढ़ते हैं ना तो उसको अल्ला पढ़ते हैं, वरना लफ्ज ये दो अलग अलग हैं। तो जब अल्लाह पढ़ते हैं तो चूंकि हम जैसों के लिए ये कुरान मजीद लिखा जाता है, जिनको कि अरबी जुबान ऐसी अच्छी नहीं आती है, तो पढ़ने के लिए भी जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है, पढ़ने में के लिए आसानी हो जाए तो लिख भी जोड़ के देते हैं, वरना ये लफ्ज अलग अलग हैं। तो उसको अन अलग लिखते और ला अलग लिखते तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्या ये कि जगह ज्यादा ले लेता है ये लफ्ज, तो इस वजह से जोड़ के लिख देते हैं अल्लाह। तो अन का मतलब होता है के, ला का मतलब नहीं। ताअदिलु, ठीक है, ला ताअदिलु, कि तुम अदल ना करो, कि तुम इंसाफ ना करो, के ला तादिलो, के तुम इंसाफ ना करो। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभार पाए कि तुम इंसाफ ना करो। ए दिलो, फिर आगे हुक्म फरमाया, इंसाफ करो, ठीक है, इंसाफ करो, अदल करो, अदल और इंसाफ ये इंटरचेंजेबली, अदल का जो लफ्ज है ये अरबी जुबान के अंदर इस्तेमाल होता है, और उर्दू के अंदर जो है वो इंसाफ का लफ्ज जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करने के लिए, अदल के कॉन्सेप्ट। हुआ अक्रबु लित्तक्वा, वो ज्यादा करीब है, अक्रबु ज्यादा करीब है, जैसे अकबरु ज्यादा बड़ा है, उसी तरह अक्रबु ज्यादा करीब है, लित्तक्वा तकवा के साथ या तकवा के लिए ज्यादा करीब है। वत्तकुल्लाह, और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, ठीक है, आम जुबान में इसको कह देते हैं डरो अल्लाह से, ठीक है, तकवा का मतलब एहतियात करो, एहतियात की जिंदगी गुजारो अल्लाह ताला के मामले में, ठीक है, बे एहतियात ना हो जाओ अपने परवरदिगार के मामले में, जैसे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बे एहतियाती के साथ रह लेते हैं, भाई कुछ नहीं होता है ना, अपने दोस्त हैं, अपने यार हैं, अपने ही बच्चे हैं, अपने ही घर वाले हैं, तो इतना कोई एहतियात की फिक्र नहीं होती, लेकिन जब किसी बड़े के सामने जाते हैं तो भाई एहतियात से रहना है, ठीक है, इनके सामने जो है ना ये कुछ गड़बड़ हो गई ना तो नाराज हो जाएंगे, इनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, अगर ये नाराज हो गए तो कोई मसला खड़ा ना कर दें हमारे लिए, या कोई मसला हो ना जाए हमारे लिए इनकी नाराजगी, एहतियात के साथ इनके साथ मामला करना है, जुबान भी एहतियात से चलानी है, हत्ता के हाथ पैर के एक्शंस भी जो है वो एहतियात से जाते हैं ना, जब इंटरव्यू देने के लिए किसी ऐसे के सामने जिसने जॉब देनी होती है तो बड़ा एहतियात से कपड़े भी पहनते हैं, टाई भी लगाते हैं, कंघा भी करते हैं, और वहां पे बैठते भी बड़े एहतियात से हैं, इस पॉस्चर में बैठना चाहिए, हाथ को ऐसे रखना चाहिए इंटरव्यू के वक्त, राइट। और आंखों को ऐसे जो है वो फेस के ऊपर फोकस होना चाहिए और खुजाना नहीं चाहिए, किसी की खुजाने की आदत हो, कहते नहीं खुजाना नहीं, इंटरव्यू के दौरान ही खुजाना, क्योंकि उसने तुम्हें जॉब देनी है, तो उनके साथ एहतियात करना, ठीक है। अल्लाह के साथ एहतियात करो, वत्तकुल्लाह, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला खबीर है, यानी बहुत अच्छी तरीके से बाखबर है, सिर्फ बाखबर नहीं है बल्कि खबीर है, ठीक है। इसको मुबालजे का सीबा, बिमा तअमलू, उस चीज के मुताल्लिक जो तुम अमल करते हो, ठीक है। ये कुरान मजीद में कई जगहों पे तअमलून आता है और कहीं पर तालमून आता है, तो हुफाज कराम के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहीं पे तामलून याद रखना और उसको तामलून को तालमून पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या फर्क है, अमल और इल्म का फर्क है। तालमून तुम इल्म रखते हो और तामलून तुम अमल करते हो, ठीक है। अल्लाह ताला खूब खबर रखता है कि तुम क्या अमल करते हो। किसी को तर्जुमे के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो पूछिएगा। अच्छा, ये तो इस पेज का तर्जुमा ना, अभी तो भी आगे भी करना है, तो वअदल्लाहुल्लज़ीना, नेक्स्ट पेज अगर आप दिखा दें, वअदल्लाहु, अल्लाह ताला ने वादा किया, अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों के साथ जो ईमान लेकर के आए, ठीक है। अल्लाह ताला प्रोमिस्ड द पीपल हु बिलीव, ठीक है ना, हु डिक्लेयर्ड टू 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 ट्रस्ट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति, और जिन्होंने नेक आमाल किए, सालिहात, नेक आमाल, अच्छे आमाल, ठीक है, सालिह यानी ऐसे आमाल जो के सेहतमंद होते हैं, सालिह सेहतमंद मुकम्मल, ठीक है, नाकिस नहीं बल्कि अच्छे सेहत वाले, जिन्होंने अच्छे अमल किए, आमिलू, उन सब के सब ने अच्छे अमल किए, लहुम, उनके लिए है, ठीक है, ये वही ली है जो कि हुम के साथ जब लगता है तो ला लिखा जाता है, ला पढ़ा जाता है, लहुम, उनके लिए है, मग़फ़िरतुन, बख्शिश, बख्शिश यानी उनके गुनाहों की मग़फ़िरत है, वा और अजरुन अजीमुन, एक बड़ा अजर, एक बड़ा यानी रिवॉर्ड, ठीक है। किन लोगों के लिए, अल्लाह ताला ने वादा किया है उन लोगों के साथ जो के ईमान लेकर के आए, जिन्होंने नेक आमाल किए, के उनके लिए, यहाँ पे के जो है वो अरबी जुबान के अंदर महजूफ है, तो क्या वादा किया है, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत है और अजीम अजर है, वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, किस चीज़ का इनकार किया, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया, जब रिसालत का इनकार हो गया तो बाकी सारी चीजों का इनकार हो गया जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, ठीक है ना। अब आप जो है वो कसीदे लिखते रहे, जैसे कि सिख ने कसीदा लिखा और हिंदू ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में नात लिखी और किसी अंग्रेज ने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की शान में किताब लिखी, लेकिन ईमान नहीं लेकर के आया, ईमान नहीं लेकर के आया, तो उसके ये कसीदे लिखने, किताब लिखनी, इसका क्या फायदा, जब नाऊज बिल्ला इतनी तारीफें कर रहा है लेकिन क्या कह रहा है, ईमान ना ला के क्या कह रहा है, नाऊज बिल्ला, नबी अलैहिस्सलाम तो नाऊज बिल्ला, सुम्मा नाऊज बिल्ला, अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए, नकले कुफर, कुफर ना बाशद, कुफर का नकल कर देना जो है वो कुफर नहीं होता, इस वजह से ये अल्फाज अदा करने पड़े समझाने के लिए कि उस शख्स ने जिसने की किताब लिखी, जिसने कसीदे लिखे, जिसने नातें पढ़ी, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो हम हमारे भी हैं सिर्फ तुम्हारे नहीं, इस तरह के शेर है ना बहुत, जो हिंदू शायर पढ़ते हैं, वो तुम्हारे नहीं हमारे भी हैं, हमारे हमारे भी हैं सिर्फ तुम्हारे नहीं, तो भाई उनको तुम एक तरफ ये भी कह रहे हो सब कुछ है सब अच्छे हैं, नाऊज बिल्ला, दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बात नहीं करी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बात नहीं करी, फिर क्या मतलब होता है इसका, झूठ बात करी, ठीक है, झूठ बात करी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका मतलब यही है ना कि तुम उन पर ईमान नहीं लेकर के आ रहे, इसका मतलब तुम यही कह रहे हो, तो शान में कसीदे कहने का कोई फायदा क्या होगा, जब एक जो बुनियादी चीज है उसी का तुमने इनकार कर दिया, तो इसको कहते हैं कुफर करना। तो नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार कर दिया, या नबी अलैहिस्सलाम की किसी एक बात को भी कह दिया कि ये सही नहीं, ये सही बात नहीं है, बाकी सारी बातें सही हैं, ये बात सही नहीं है, तो इस एक झूठ से भी इंसान झूठा ही बन झूठा ही कहलाता है, जब कोई किसी को कि एक बात पे कहता है कि इसने ये झूठ बोला है, तो इससे वो बंदा जो है उसको वो झूठा ही कह रहा हो। ठीक है, तो चाहे 100 चीजों को झूठा कहे, चाहे 100% चीजों को झूठा कहे, चाहे 1% चीज को झूठा कहे, लेकिन वो इनकार ही होता है। तो बल्लभ सिंह ने कहा, वो लोग जिन्होंने इनकार किया ना मेरे सरसाम का, वह कत जब वो भी आया थी ना। ठीक है, और फिर उन्होंने तकजीब करी। तकजीब करने का मतलब क्या होता है कि झूठा कहा, तकजीब करने का मतलब झूठा कहा किसको, हमारी आयात, हमारी निशानियों को। कौन सी निशानियां, दरख्त को झूठा कहा कि नहीं ये दरख्त नहीं है बल्कि ये पहाड़ है, कि दरख्त अल्लाह की निशानी थी, उन्होंने कह दिया कि नहीं ये दरख्त नहीं है बल्कि ये पहाड़ है, तो इसका मतलब है कि कज़बू पे आया थी ना। नहीं, उन निशानियों की बात नहीं हो रही जो कि एक इंसान देखता है कि अच्छा ये अल्लाह ने बनाया, दरख्त ये अल्लाह ने बनाया, पहाड़ ये अल्लाह ने बनाया, पत्थर ये अल्लाह ने बनाया, बादल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो निशानियां बताई हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी निशानी को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, या नबी अलैहिस्सलाम ने जो कुरान मजीद की आयात, एक एक आयत जो है वो अल्लाह ताला की निशानी है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। ठीक है, तो उन आयात की तकजीब करी कि नहीं ये झूठी है, नऊज़ बिल्ला, ये कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनके साथ क्या होगा, उलाइका असहाबुल जहीम, वो जहन्नुम वाले हैं। जहन्नुम तो वैसे झटके वाली हाथ से लिखी जाती है, तो वो जहीम वाले, क्योंकि जहन्नुम के नामों में से एक नाम जो है वो जहीम है, तो जहन्नुम, जहन्नुम के साथ रहने वाले या जहन्नुम के अंदर रहने वाले, असहाबुल जहीम। ठीक है, तो ये हो गया तर्जुमा। किसी को तर्जुमे के बारे में सवाल हो तो वो पूछिएगा। कई अगली जो चीज़ होती है वो क्लास तफसीर होती है, जो कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयान और कुरान से हजरत यहाँ पे नकल फरमाते हैं। किस्त और एदलु दोनों इंसाफ के मानी में हैं, इन दोनों में कुछ खास फर्क है क्या, इसकी तहकीक तो अभी मेरे सामने नहीं है। एतदाल शुहदा बिल किस्त, तो इंसाफ की गवाही देना, एतदाल का जो रास्ता होता है ना, तो वो यानी जो एतदाल कायम करो वो फिर बहुत ही दरमियान का रास्ता, ना इफरात ना तफरीत, वो एक बहुत ही यानी जनरलाइज किस्म का कॉन्सेप्ट है। लेकिन किस्त का जो लफ्ज है इसको हम देखते हैं आगे इंशाल्लाह, जब आप साहब के उसकी मजीद तहकीक लिखी होगी तो खुलासे तब से अभी मेरे जहन में नहीं है, अगर कभी पढ़ा भी होगा तो इस वक्त नहीं है। खुलासे तफसीर में जो बयान और कुरान से नकल की गई है, फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो होती है वो तफसीर होती है और अंडरलाइन जो होते हैं वो तर्जुमा होता है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह क्या होता है तर्जुमा। तो ए ईमान वालों, अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए अहकाम की पूरी पाबंदी करने वाले, और शहादत की नौबत आए तो इंसाफ की शहादत अदा करने वाले रहो, यानी शुहदा अदिल किस्त वाले रहो, कवामीन मतलब वाले रहो, यानी इसी पे कायम रहो, और किसी खास ग्रोह की अदावत तुमको इस पर बाइस ना हो जाए कि तुम उनके मुआमलात में अदल ना करो। यानी जरूर हर मामले में अदल किया करो, यानी अदल करना तकवा के ज्यादा करीब है। एदलू एदलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा वत्तक़ुल्लाह, तो वत्तकुल्लाह का तर्जमा कैसे किया, यानी उससे तकवा के साथ, अच्छा तकवा के ज्यादा करीब है, यानी उससे तकवा के साथ मौसूफ कहलाता है, यानी जो अदल करता है वो फिर तकवा की सिफत वाला शख्स होता है, तो वो उसका मौसूफ बन जाता है, तकवा का मौसूफ, तकवा एक सिफत है। ठीक है, यानी तकवा वैसे तो एक अमल है लेकिन सिफत के मानी में भी इस्तेमाल होता है, तो जो तकवा इख्तियार करता है तो फिर वो उससे मौसूफ हो जाता है। और तकवा इख्तियार करना तुम पर फर्ज है, चुनाचे हुक्म हुआ है कि अल्लाह ताला की मुखालफत से डरो। ठीक है, जिसको कि हमने एहतियात के लफ्ज से एक्सप्लेन किया था, उसको यहाँ पे ने अल्लाह ताला की मुखालफत से डरो, मुखालफत का मतलब अल्लाह ताला की जो मर्जी है, जो रजा है, जो हुक्म है, तो उसकी मुखालफत से तुम डरो, यानी गुनाह से बचो। यही हकीकत है तकवा की। बस अदल जो कि इस फर्ज तकवा का मौकूफ अलैह है नीज फर्ज होगा। तो यही यानी जो जो तकवा है, तो यही सॉरी अदल है, यही हकीकत है तकवा की। ठीक है, यानी हर चीज के अंदर जो सही तरीका है करने का उसी तरीके को इख्तियार करो, जिसका जितना हक बनता है उसको उतना ही हक दो, उससे ज्यादा नहीं दो, उससे कम नहीं दो। ठीक है, या किसी दूसरे का हक जो है वो मार करके इसको ना दो, या किसी दूसरे के हक में बिल्कुल कमी ना करो, खत्म ना कर दो किसी दूसरे का हक। तो यही हकीकत है तकवा की। बस अदल जो कि इस फर्ज तकवा का मौकूफ अलग है, यानी फर्ज तकवा जो है वो अदल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अदल का रास्ता इख्तियार करते जाओगे तो तकवा तुम्हें मिल जाएगा, यानी तकवा वाले कहलाओगे, तकवा वाले डिक्लेयर्ड होगे। ये डिपेंड करता है अदल के ऊपर, तकवा डिपेंड करता है अदल के ऊपर। तो नीज फर्ज होगा, अदल भी फर्ज हो गया, यानी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो अब जिस तरह तकवा फर्ज है उसी तरह अदल भी फर्ज है। बिला शुबा अल्लाह ताला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी इत्तला है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। बस मुखालिफीन अहकाम को सजा हो जाए तो बाइद नहीं, जो अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालफत करते हैं वो कोई ऐसी ना समझ में आने वाली बात नहीं है कि अगर उनको सजा हो जाए। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से जो ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे काम किए वादा किया है कि उनके लिए मग़फ़िरत और सवाब अज़ीम है, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारे अहकाम को झूठा झूठा बताया ऐसे लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं। अस्हाबुल जहीम रहने वाले से हज़रत ने ट्रांसलेट किया। अच्छा मारूफ मसाइल भी शुरू कर लेते हैं आज ही। तो हाँ, तो मारूफ मसाइल फरमाते हैं कि मस्कूरा तीन आयतों में से पहली आयत का मजमून तकरीबन उन्हीं अल्फाज के साथ सूरह निसा में भी गुजर चुका है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां कूनू कवामीना बिलकिस्त शुहदा लिल्लाह इरशाद हुआ था, और यहाँ पर कूनू कवामीना बिलकिस्त सॉरी कूनू कवामीना लिल्लाही शुहदा बिलकिस्त फरमाया गया है। ठीक है, तो सूरह मायदा के अंदर लिल्लाह का लफ्ज पहले लेकर के आए हैं, और सूरह निसा के अंदर लिल्लाह का जो लफ्ज है वो बाद में लेकर के आए हैं, शुहदा लिल्लाही, और किस्त का जो लफ्ज है वो पहले लेकर के आए। तो इन दोनों आयतों में अल्फाज के तकद्दुम और तअख्खुर की एक लतीफ वजह अबू हयान ने तफसीर बहरे मुहीत में जिक्र की है। अब ये अल्फाज क्यों आगे पीछे किए ना, अल्लाह ताला ने सूरह निसा में ये तरतीब रखी अल्फाज की और सूरह मायदा में ये तरतीब रखी। तो अब जो उलमाए कराम मुफस्सरीन होते हैं तो वो इसको छोड़ते तो नहीं है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बा मुहावरा तर्जुमा तो एक ही बन रहा है दोनों का, उर्दू में तो यही तर्जुमा बन रहा है या फारसी में तो यही तर्जुमा बन रहा है, तो इस वजह से लेट्स मूव ऑन अब अगली बात करो। नहीं, एक एक लफ्ज के ऊपर डेरे डाले, एक एक लफ्ज के ऊपर तहकीक करी कि क्या इसका मकसद क्या हो सकता है। तो कुरान मजीद के अंदर एक एक लफ्ज ना सिर्फ अहम है बल्कि एक एक लफ्ज की पोजिशनिंग भी अहम है। तो इसके ऊपर जो बहरे मुहीत में हजरत बुहैया ने लिखा, तो उसका खुलासा बयान करते हैं कि इंसान को अदल व इंसाफ से रोकने और जुल्म व जोर में मुब्तला करने के आदतन दो सबब हुआ करते हैं। अच्छा, आज चूंकि क्लास का टाइम ही भूल गए थे तो जो मुतालिया करना था वो भी हमसे निकल गया, इस वजह से काफी दिन पहले का किया हुआ मुतालिया जो है वो फिर हम समझ रहे हैं कि पहली दफा पढ़ रहे हैं आपके सामने, गोया के पहली दफा पढ़ नहीं रहे लेकिन गोया के पहली दफा पढ़ रहे हैं। अल्लाह आसानी फरमाए, तो आपके सवाल का भी इसी वजह से शायद सही जवाब नहीं मिल सकता। तो फरमाते हैं कि इंसान को अदल इंसाफ से रोकने और जुल्म और जोर में मुब्तला करने के आदतन दो सबब हुआ करते हैं। ठीक है, आदतन से मुराद होती है कि अक्सर औकात, और कॉमन कॉज का क्या होता है, दो दो कॉजेज होते हैं कॉमनली। एक तो ये कि अपने नफ्स या अपने दोस्तों अजीजों की तरफदारी, ठीक है, दूसरे किसी शख्स की दुश्मनी और अदावत। तो सूरह निसा की आयत का रूए सुखन पहले मजमून की तरफ है, यानी अपने नफ्स या अपने दोस्तों और अजीजों की तरफदारी। ठीक है, तो सूरह निसा में अजीजों की तरफदारी की तरफ इशारा है। रूए सुखन यानी बात का जो डायरेक्शन है ना, वो अजीजों की तरफदारी की तरफ है। और सूरह मायदा की इस आयत का रूए सुखन, रू कहते हैं डायरेक्शन को, चेहरे को, सुखन यानी जो जो अल्फाज बयान किए गए हैं, तो यहां पर रूए सुखन दूसरे मजमून की तरफ है। क्या? दुश्मनी और अदावत, किसी की दुश्मनी और अदावत। ठीक है, जुल्म की इनमें से दो वजूहात बनती हैं, इसलिए सूरह निसा में इसके बाद इरशाद है, वलो अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अकरबीना, यानी अदल इंसाफ पर कायम रहो। पूरी आयत तो इस तरह बनी ना, कूनू कवामीना बिल किस्त शुहदा अलिल्लाही वलो अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अकरबीना, यानी अदल इंसाफ पर कायम रहो, चाहे वो अदल इंसाफ का हुक्म खुद तुम्हारे नफूस या तुम्हारे वालिदैन और अजीजों और दोस्तों के खिलाफ पड़े, चाहे वो उनके खिलाफ क्यों ना जा रहा हो, फिर भी यानी उनकी तरफदारी जो है ना, जो कि इंसान के दिल में तबअन नेचुरली एक तरफदारी होती है, एक जो है वो फेवरेटिज्म होता है अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीजों के लिए और अपने दोस्तों के लिए। अजीजों से मुराद रिश्तेदार, बाकी रिश्तेदार, वालिदैन तो सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, लेकिन भाई बहन बेटा बेटी और चचा मामू फुप्पा कजन्स वगैरह, ये सब बाकी रिश्तेदार में आ गए। और दोस्त जो है फिर जिनके साथ आपका कलबी तो ताल्लुक होता है, रिश्तेदारी का ताल्लुक जरूरी नहीं है उनके साथ हो, तो उनकी तरफ जो इंसान की तबीयी रुझान होता है, वो इंसान को फिर किसी और के साथ जो है ना, जिसके साथ इसका रिश्तेदारी का ताल्लुक नहीं, हाँ दुश्मनी भी नहीं है लेकिन रिश्तेदारी का भी ताल्लुक नहीं है, दोस्ती का भी ताल्लुक नहीं है, और वो इसके माँ बाप या दादा दादी नाना नानी भी नहीं है, अब कोई भी नहीं, बस एक कॉमन से आद लोग हैं, दुश्मनी कोई नहीं है उनके साथ लेकिन तरफदारी भी कोई नहीं है। तो अब जो है ना, वो प्रेफर किसको करता है? अपने वालिदैन की बात को करेगा, अपने रिश्तेदारों और अजीजों दोस्तों की बात को करेगा, इस तरह से फिर जुल्म का मुर्तकिब हो जाएगा। जबकि सूरह मायदा की इस आयत में जुमला मजकूर के बाद ये इरशाद है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, यानी किसी कौम की अदावत व दुश्मनी तुम्हें इस पर आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ के खिलाफ करने लगो। ठीक है, कितनी बेहतरीन जबरदस्त किस्म की बात है जिसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता, और कोई ऐसी बात है नहीं जिसके इनकार करने की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन मुशाहिदा भी यही है, अकल के भी मुनासिब बात है। और जो है अगरचे के कोई कहे नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं फरमाया था, तो आपने अबू हयान साहब आपने कैसे ये बात कर दी? तो भाई नबी अलैहिस्सलाम से अगर कोई हदीस नहीं भी मिलती इसके ऊपर, लेकिन ये कोई उसूल दीन के खिलाफ है ही नहीं। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं, और सारे कराइन इसके हक में शहादत दे रहे। ठीक है, ये बात ऐसी ही है जैसे कि अबू हयान रहमतुल्लाह ने बयान फरमाई, बेशक नबी ने ऐसी बात नहीं कही कभी, या किसी सहाबा ने इस तरफ इशारा नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से कोई ऐसी यानी तफसीर में कोई ऐसी बात बयान कर देना जो कि उसूल दीन के मुवाफिक हो, ये अपनी तरफ से तफसीर करना नहीं कहलाता। ठीक है, कि ये तो ना नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात फरमाई थी ना ना सहाबा ने ऐसी बात फरमाई थी, तो आपने ऐसी बात कैसे कर दी, आप तो आम उम्मती हैं, ठीक है आलिम है, लेकिन आप जो है वो क्या कहते हैं कुरून उला के भी असलाफ में से भी नहीं है, बात के कोई आलिम है, तो आपने अपनी तरफ से तफसीर करनी शुरू कर दी, नहीं ऐसा नहीं कह सकते उनको। ठीक है, अपनी तरफ से तफसीर करने का तो मतलब होता है कि आप एक्सप्लिसिटली कोई अजीब व गरीब किस्म की बात करें जिसका के दीन के उसूलों से भी कोई ताल्लुक नहीं, और वो टकराती है किसी उसूल के साथ, तो फिर ऐसी तफसीर करना जो है वो जहन्नुम को दावत देना है। बिल्कुल अच्छा, इसीलिए सूरह निसा की आयत का हासिल ये हुआ कि अदलो इंसाफ के मामले में अपने नफ्स और वालिदैन और अजीजों की भी परवाह ना करो। ठीक है, अगर इंसाफ का हुक्म उनके खिलाफ है तो खिलाफ ही पर कायम, तो ये है कुरान की तारीफ। ठीक है, इसी वजह से जब दीन इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया, नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए और कुरान मजीद जो है वो इंसानों को पढ़ के सुनाया, तो वैसे तो सबने ही मुखालफत कर दी, लेकिन जिन लोगों ने मुखालफत नहीं करी और वो कबूल करने वालों में से हो गए, तो उनकी सबसे पहले दुश्मनी किसने करी? उनकी सबसे पहले जो है वो मुखालफत और उनके साथ जो है वो यानी लड़ाई और उनकी उनकी पिटाई किसने करी? सबसे पहले किसने करी? उनके अपने वालिदैन ने करी, उनके अपने अजीजों ने करी, उनके अपने दोस्तों ने करी, राइट? रोमन एम्पायर ने आकर के उनकी पिटाई नहीं करी, पर्शियन एम्पायर ने आकर के उनकी पिटाई नहीं करी, इजिप्शियन एम्पायर ने आकर के उनकी पिटाई नहीं करी, बहरेन के बादशाह ने आकर के उनकी पिटाई नहीं करी। किसने पिटाई करी? सबसे पहले उनकी उनकी अपनी माँ ने करी, उनके अपने बाप ने करी, उनके अपने दोस्तों ने करी, उनके अपने कजन्स ने करी, ठीक है? क्योंकि दीन जो है ना वो ये तालीम देता है कि भाई जो अल्लाह है ना, अल्लाह का हक सबसे ज्यादा है, ठीक है? वालिदैन का हक बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा, ठीक है? और नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो यहाँ पर अपनी तरफ से कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं कि बस तुम मेरी मानो, ठीक है ना? नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पे क्या बात बताने के लिए आए हैं? अल्लाह की बात बताने के लिए आए, ठीक है? तो अल्लाह का हक तो फिर वालिदैन से ज्यादा है ना, ठीक है? तो जब लोगों ने कहा कि हाँ हम नबी अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे क्योंकि ये अल्लाह की बात है, तो फिर अम्मा अब्बा को तो ये बात पसंद नहीं आती ना फिर उसके बाद, ठीक है? वो दुश्मन हो जाते हैं, इल्ला ये कि माँ बाप खुद नबी अलैहिस्सलाम को मान लें, फिर वो दुश्मन नहीं होंगे इस बात के ऊपर। वालदैन खुद मान लें कि हाँ अल्लाह जो है वो हमसे ज्यादा अहम है, तब कोई दुश्मनी नहीं होगी, ठीक है? जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह ने मान लिया कि अल्लाह जो है वो मुझसे ज्यादा अहम है, तो अब अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अगर नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात सुन करके अब उमर रज़ी अल्लाह की मुखालफत करें, उमर रज़ी कोई तकलीफ नहीं इसके ऊपर, राइट? लेकिन अबू कहाफा रज़ी अल्लाह तआला बाद में मुसलमान हो गए, तो अबू कहाफा जो कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के वालिद थे, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं माना, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने मान लिया, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की दुश्मनी सबसे पहले वालिद की तरफ से हुई। उसी तरह से तलहा रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा, उन्होंने उनकी पिटाई लगानी शुरू करी, उनको जलील और रुसवा करना शुरू किया और गालियां देनी शुरू करी, ठीक है? तो दीन तो ये है ना, ठीक है ना? अब अगर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो कहते नहीं बस मैं तो दुआएं करने के लिए आया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम मुझसे दुआएं करवा लिया करो, ठीक है? तो भाई खाली दुआ करवाने के का मामला तो फिर भाई आप फिर एक इंसान है जिस तरह हम इंसान हैं, ठीक है ना? और वालिदैन जो हैं तो वालिदैन के तो हमने गोदों में हम पले हैं, ठीक है ना? वालिदैन के तो हम गोदों में पले हैं, वालिदैन ने तो हमें खाना खिलाया है, वालिदैन ने तो हमें हमारी नजासत को साफ किया है, वालिदैन ने तो हमारी सारी जरूरियात को पूरी किया है, तो अब जो है मैं दुआ करवाना है तो मैं वालिदैन से क्यों ना करवा लूँ, आपसे क्यों करवाऊँ दुआ, ठीक है ना? कि आपने बस आके कहना शुरू कर दिया भाई मुझसे दुआ करवा लिया करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ मुझसे दुआ करवा लिया करो, ठीक है? तो दुआ तो फिर वालिदैन से ना करवा लें, या और कोई प्रेफरेंस देनी है तो फिर वालिदैन को प्रेफरेंस ना दे रहे, क्योंकि वालिदैन के तो एहसानात ज्यादा है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम की बात क्यों माने? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी जात के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, वालिदैन के साथ तो एक जाती ताल्लुक होता है, नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी जात के लिए आए नहीं, नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के लिए आए जो कि खालिक सबका है, नबी अलैहिस्सलाम किसी का खालिक नहीं है, लेकिन अल्लाह तो खालिक है ना, अल्लाह तो राजिक है ना, नबी अलैहिस्सलाम तो राजिक नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम कासिम तो हैं, राइट? तकसीम करने वाले, लेकिन मुअती कौन है, अता करने वाला कौन है, वो तो अल्लाह है ना, राजिक कौन है, वो तो अल्लाह है ना, ठीक है? तो ये जो प्रेफरेंस बनती है ना, या ये जो यानी क्या कहते हैं दर्जा बुलंद होता है रसूल का, वो क्यों बुलंद होता है माँ बाप के मुकाबले में? अल्लाह की वजह से बुलंद होता है। और यही मामला, ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आपको कोई नई बात तो नहीं कर रहा है आपके सामने, ये हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जिस तरह से नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात बता करके वालिदैन से भी ऊपर का दर्जा ले गए, राइट, वालिदैन से भी ज्यादा अहम हो गए। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की बात बताते हैं, अल्लाह को राजी करने का तरीका सिखलाते हैं, अल्लाह की नाराजगी से बचने का तरीका सिखलाते हैं, इस वजह से वो वालिदैन से बुलंद हो गए। बिल्कुल यही मामला जो नबी अलैहिस्सलाम के वरसा हैं, उलमा और मशायख, उनकी भी अजमत जो है वो वालिदैन के ऊपर है। इस वजह से, किस वजह से? अल्लाह की वजह से। किस वजह से ऊपर है वालिदैन से? अल्लाह की वजह से। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा अच्छी दुआ मांग लिया करते हैं, इस वजह से नहीं कि वो उनको देख करके जो है वो पता नहीं कोई आपको उनके ऊपर नूर टपकता हुआ नजर आता है उनके चेहरों के ऊपर, इस वजह से वो ज्यादा अफजल है। नहीं, इस तरह से देखोगे तो वालिदैन ज्यादा अफजल है, ठीक है? तो अगर हम उलमा को फकत दुआ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या अपने मशाइख को फकत दुआ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फकत बरकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं फकत, तो भाई ये काम आप अपने अब्बा से करवाइए जाकर के, ये काम अपनी अम्मा से करवाइए जाकर के, जिन्होंने आपकी पौटियां धुलवाई हैं, धोई हैं खुद से, ठीक है ना? बात समझ में आई? क्या किया उन्होंने आपके लिए जो आप भी किसी के लिए ना करें, वो उन्होंने आपके लिए किया है, ठीक है? और आपकी जो है ना वो टेंट्रम्स बर्दाश्त किए हैं, आपके रोने धोने के बावजूद आपको जो है उन्होंने खिलाया पिलाया और पाला पोसा है, तो उनका हक हाँ आपके ऊपर ज्यादा बनता है। और दुआ भी नबी अलैहिस्सलाम की नस से साबित है कि वालिद की दुआ और वालिदा की दुआ। क्यों ये बात कही जा रही है? क्योंकि आज के दौर में जो है ना वो अक्सर लोग जो है वो अपने मशायख को यही समझते हैं बस, ठीक है, कि वो कोई बरकत वाली शख्सियत है और वो कोई दुआ वाली शख्सियत है। तो आगे से अम्मा कहती है, मेरा तुम्हारे ऊपर ज्यादा हक है, मेरे पास रहो, उधर क्यों जा रहे हो तुम? वो बात गलत नहीं कहती है, वो बात गलत नहीं कहती, उसने कुर्बानियां ज्यादा दी हैं। शेख साहब ने कोई थोड़ी आपकी जो है वो नौजबिल्ला नजासत साफ करी आकर के, शेख साहब ने कोई थोड़ी आके जो है वो आपको अपने हाथ से खिलाया, आपके टेंटरम बर्दाश्त किए, राइट? तो हक तो वाकई अम्मा का ज्यादा है फिर, और अम्मा भी और अब्बा का भी वक्त हक ज्यादा है फिर, ठीक है? अगर खाली दुआ की आपने वो मशीन बनाना है ना, दुआ की एटीएम बनाना है शेख साहब को, और बरकत की कोई आपने डिवाइस बनानी है शेख साहब को, तो भाई ये दोनों चीजें आपको अम्मा अब्बा के पास मिल जाएंगी। लेकिन अगर शेख साहब से अल्लाह को राजी करने का तरीका सीखना है, भाई इल्म हासिल करना है कि जिससे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी, ये इल्म अम्मा अब्बा के पास नहीं, अनलेस के उन्होंने जो है वो ये इल्म हासिल किया हो बाकायदा, तब तो उनके पास हो सकता है, वरना नहीं है उनके पास ये इल्म। अल्लाह को राजी करने का इल्म, कलेक्टिवली स्पीकिंग भी, इंडिविजुअली स्पीकिंग, पर्सनली स्पीकिंग भी, ये इल्म सीखने के लिए शेख के पास जाते हो तो शेख का दर्जा बुलंद होगा माँ बाप के मुकाबले में, वरना नहीं हो, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि भाई बोले चल रहा हूँ, किसी को कोई इश्काल है इसके ऊपर ये नहीं समझ में आई तो ये पूछिए आप, ठीक है? वाकई अरबी जबान के अल्फाज तो भाई जिस आर्टिस्ट को जितना आता हूँ उतनी आपको बता सकते हैं, माशाल्लाह जो उलमाए कराम है इन्होंने इसके फनून के ऊपर ज्यादा पीएचडी करी हुई होती है, वो आपके ज्यादा अच्छे सवाल के जवाब दे सकते हैं, हम तो थोड़े बहुत दे लेते हैं जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट आप बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमसे क्या हुक्म, क्या क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इसलिए सूरह निसा की आयत का हासिल ये हुआ कि अदल इंसाफ के मामले में अपने नफ्स और वालिदैन और अजीजों की भी परवाह, अदल इंसाफ क्या होता है, किस सिचुएशन के अंदर इंसाफ किसको कहते हैं, ये कौन बताएगा? ये वालिदा नहीं बताएंगी क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है इंसाफ का, वालिद भी नहीं बता सकते क्योंकि उनके पास भी जो है वो इतना इल्म नहीं होता कि वो इंसाफ को हर सिचुएशन के अंदर आपको एक्सप्लेन कर सकें अनबायस तरीके से। ये इल्म शेख को अल्लाह ताला ने अता फरमाया, इसी वजह से वो शेख बनाए, दाढ़ी लंबी दादा होने की वजह से वो शेख नहीं बनाए, या किसी के जो है मरने के बाद जो है वो उसके बाद उसका बेटा ये रह गया था, इस वजह से वो शेख नहीं बनाए, बल्कि इस इल्म की वजह से बनाए। तो हम शेख से इल्म ही हासिल ना करें और उल्टी सीधी ऊपर उल्टी सीधी हरकतें करते रहें, ठीक ठीक है, शेख के साथ जो है इल्म के मामले में तो शेख साहब बात करें, अपनी बातों अपनी गप्पों में लगे हुए हैं अपनी, उन्होंने जो है वो अपनी अलग सी मीटिंग्स बनाई हुई हैं, और जो है शेख साहब बके चले जा रहे हैं और ये अपनी मीटिंग में मसरूफ है अपने। इसका मतलब ये है कि यू डोंट इवन नो व्हाट दिस होल रिलेशनशिप इज। ठीक है, क्या लिख रहा है, इसलाए अहवाल के लिए शेख से ताल्लुक रखने पर शेख का दर्जा वालिदैन से ज्यादा बढ़ता है। जी एग्जैक्टली ठीक है, अल्लाह के करीब होने के लिए, क्योंकि ये वास्ता बनता है इल्म की वजह से, इस वजह उसका दर्जा ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, सफेद बालों की वजह से और इन सब चक्करों की वजह से नहीं बढ़ता उसका दर्जा। तो इल्म है असल चीज, तो इल्म हासिल करना। ठीक है, तो यही वजह है कि सूरह निसा की आयत में किस्त यानी इंसाफ को मुकदम करके इरशाद फरमाया, कूनू कव्वामीन बिल्किस्त शुहदा लिल्लाह, और सूरह मायदा की आयत में लिल्लाह को मुकदम करके इरशाद फरमाया, कूनू कव्वामीन लिल्लाह शुहदा बिल्किस्त। अगरचे अंजाम और नतीजे के एतबार से दोनों अनवान एक ही मकसद को अदा करते हैं, अंजाम और नतीजा वही भाई इंसाफ से काम लो, क्योंकि जो शख्स इंसाफ पर खड़ा होगा वो अल्लाह ही के लिए खड़ा होगा। ठीक है, तो लिल्लाह पहले आए कि लिल्लाह बाद में आए, इंसाफ अल्लाह ही के लिए करना है ना, और जो शख्स अल्लाह ही के लिए खड़ा हुआ है वो जरूर इंसाफ ही करेगा, लेकिन अपने नफ्स और दूसरों और दोस्तों अजीजों की रियायत के मकाम में ये ख्याल गुजर सकता है कि इन ताल्लुकात की रियायत भी तो अल्लाह ही के लिए है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी वाली बात है भाई, कि हुज्जत निकालनी वाली ना, तो ये आता है हमारे दिनों के अंदर, कोई ना कोई हुज्जत निकाल लेते हैं अपनी गलत हरकत की, तो वो भी तो अल्लाह ही के लिए है। इसलिए वहां लफ्ज किस्त को मुकदम लाकर इसकी तरफ हिदायत कर दी कि वो रियायत अल्लाह के लिए हो ही नहीं सकती अदल इंसाफ के खिलाफ। ठीक है, ये बड़ा गोल्डन बल्कि डायमंड से लिखने वाले, ये कोई और चीज होगी इस तरह की, तो उससे लिखने वाले अखबार सुनहरी हरूफ से। ठीक है, कि जो अदल और इंसाफ के खिलाफ बात हो ना, वो अल्लाह के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, सूरह मायदा में दुश्मनों के साथ अदल और इंसाफ बरतने का हुक्म देना था, तो वहां पर लफ्ज लिल्लाह को मुकदम लाकर इंसानी फितरत को जज्बात में मغلوب होने से निकाल दिया, कि तुम लोग अल्लाह के लिए खड़े हो, जिसका लाजमी नतीजा ये है कि दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करो। ठीक है, बात फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे, बस यहीं तक बात आज की मुकम्मल, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो ये मामला। ठीक है, अब ये दुश्मनी जो है वो जब गुस्सा आता है तो फिर वो अपना भाई भी दुश्मन बन जाता है, गुस्सा आता है तो बीवी तो सबसे पहले दुश्मन बनती है। ठीक है, और इस तरह के दूसरे भी मसले मसाइल जो है वो इंसान के खड़े होते हैं। तो भाई जहाँ ये मामला हो ना इंसाफ का, तो वहां पे फिर इंसाफ करना पड़ेगा, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो जो है वो अपने रिश्तेदार हो, चाहे कोई और कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई दूसरा मुल्क हो, चाहे वो कोई दूसरा दीन वाला ही क्यों ना, इंसाफ तो फिर इंसाफ होता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ के लिए कोई एक्सक्यूज कंसिडरेबल नहीं है, मतलब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ के लिए कोई एक्सक्यूज कंसिडरेबल नहीं है। हाँ मतलब कि भाई ये तो मेरे बाप थे इस वजह से मैं इंसाफ ना कर सका, ये मेरी माँ थी इस वजह से मैं इंसाफ नहीं कर सका, और इससे बड़ी और क्या एक्सक्यूज होगी। ठीक है, बाकी शेख का तो काम ही होता है कि आपको इंसाफ सिखाए और आपसे इंसाफ करवाए, तो शेख की खातिर जो है वो बेइंसाफी कर रहे हैं, तो ये तो ऑक्सीमोरॉन वाला ही सिचुएशन बन जाएगी कि मेरा आपके शेख से ताल्लुक है क्यों, क्यों आपने बनाया है भाई, दुआएं करवाने के लिए और नौकरियां लगवाने के लिए आपने शेख के साथ ताल्लुक बनाया या अल्लाह को राजी करने के लिए, तो भाई शेख का तो काम है ही है, लेकिन माँ बाप का काम जो है ना वो तो खिलाना पिलाना और इस किस्म की परवरिश करना, जिससे कि वो कोई भी माँ बाप बन जाता है। अब ये नहीं होता कि नहीं उसने अल्लाह तक नहीं पहुंचाया, अल्लाह की रास्ता नहीं दिखाया, तो अब वो माँ बाप नहीं है, नहीं, माँ बाप तो वो पैदाइश बाई बर्थ होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से माँ बाप के साथ ये फिर फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि क्या इंसाफ की बात है, क्या इंसाफ की बात नहीं है। बाई डिफॉल्ट एज्यूम नहीं कर सकते तो वो इंसाफ के खिलाफ बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, चले आप क्लास खत्म करते हैं, जज़ाकुमुल्लाह, और लेट आपको छोड़ने का माजरत हो, आप अलहमदिल्ला।